शांति। गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुभ शुरुआत अमृत वेले से ही सभी ने की है और अभी हम जीवन का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। विश्व का वर्तमान हम सब देख रहे हैं, भल भौतिक विकास हो रहा है, लेकिन मनुष्य आत्माएं अपने नैतिक चारित्रिक आध्यात्मिक दृष्टि से पतन को ही प्राप्त करती जा रही है और ये हमारी अनैतिकता ही हमारे तनाव का, दुख और अशांति का मूल कारण है। अगर विश्व का वर्तमान हम बदलना चाहते हैं और बहुत ही सुखमय बेहतर संसार हम बनाना चाहते हैं तो गीत में भी सुना कि हमें उसके लिए आत्म परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शुरुआत तो हम खुद से ही करेंगे ना, और उसके लिए स्वयं का परिवर्तन तभी हम कर सकते हैं जब स्वयं का सही ज्ञान हो, जीवन में स्वदर्शन का, स्वचिंतन का अभ्यास हो। हम आईने में चेहरा देखते हैं तो पता चलता है कि मुझे चेहरे पर क्या ठीक करना है। इसलिए बार बार हम देखते रहते हैं, पर हमें जीवन में स्वदर्शन करने का अभ्यास नहीं है, क्योंकि स्वयं को जानते नहीं हैं। तो आज के इस प्रथम सत्र में जीवन की इस पहेली को हम हल करेंगे कि हम स्वयं कौन हैं। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और आखिर हमें कहां जाना है। हर धर्म में इस बात का महत्व दिया जाता है कि नो थाई सेल्फ, خود کو جانیں گے تو خدا کو بھی پہچان سکیں گے۔ اکثر ہم پرماتما سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ انتر مم وکست کرو، نرمل کرو، اجول کرو، وہ ہمارا آنترک سوروپ کون سا ہے؟ ہم اپنے باہیہ سوروپ کو جانتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو بھی ہم اپنا شاریرک سانسارک پریچے ہی ایک دو کو بتاتے ہیں۔ ہماری کانشیسنیس میں بھی سکشم میں، ہماری سمرتی میں بھی یہی رہتا ہے کہ میں استری ہوں یا میں پروش ہوں، میں یوا ہوں، بوڑھا ہوں، کالا ہوں، گورا ہوں۔ سپشٹ ہے ہم اپنے آپ کو شریر سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم شریر بھان میں رہتے ہیں، دیہ ابھیمان میں جیون جیتے ہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو چیک کریں، صبح اٹھتے ہیں تب سے لے کر رات کو سو جاتے ہیں تب تک جو بھی کرم ہم کرتے ہیں، اس سمے اگر ہم اپنی سکشم سمرتی کو چیک کریں، آپ پائیں گے کہ کچھ ایک کرموں میں شریر کے نام، روپ، رنگ، آیو کی کانشیسنیس رہتی ہے کہ میں مسٹر فلانا ہوں، پتا ہے میں کون بول رہا ہوں، میں سندر ہوں، کالا ہوں، یوا ہوں۔ شریر کے نام، روپ، رنگ، آیو کا ابھیمان رہتا ہے، کچھ ایک کرم ویوہار دیہ سمبندھوں کے ابھیمان میں آ کر ہم کرتے ہیں کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں، میں ان کا پتی ہوں، میں ان کی ساس ہوں۔ سمبندھ کے ابھیمان میں آ کر ویوہار کرتے ہیں، ہمیں اپنے پروفیشن کی کانشیسنیس رہتی ہے کہ میں گورنمنٹ آفیسر ہوں، میں ادیوگ پتی ہوں، ڈاکٹر ہوں، منسٹر ہوں، ریٹائرڈ ہو جانے کے بعد بھی یہ کانشیسنیس بنی رہتی ہے کہ میں ایکس ایم ایل اے ہوں، میں ایکس چیف انجینئر ہوں۔ پروفیشن کی کانشیسنیس، इस प्रकार देह धर्मों की कॉन्शियसनेस रहती है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, सिख है। जाति की कॉन्शियसनेस, हम ब्राह्मण हैं, ये बनिया है, राजपूत है। इवन भाषा की कॉन्शियसनेस, ये तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, पंजाबी है। भाषा की कॉन्शियसनेस, इवन नेशनलिटी की कॉन्शियसनेस कि मैं अमेरिकन हूं, मैं जैपनीज हूं, चाइनीज हूं। हम कह सकते हैं हम टोटल बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। हमारा जीवन सांसारिक बन गया है। प्रैक्टिकली हमारा मैक्सिमम टाइम, मनी, एनर्जी देह के पीछे, दैहिक प्रवृत्तियों के पीछे, देह संबंधों के पीछे खर्च हो रहा है। हमारे जीवन के इस स्वरूप को देखते हुए हमें एक क्षण शांति से सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, शरीर भान में रह रहे हैं, देहाभिमान में आकर कर्म करते हैं, पर क्या हम शरीर हैं? सोचिए, क्या मैं शरीर हूं? जबकि शरीर के बारे में हम जानते हैं कि वास्तव में शरीर क्या है, वास्तव में हमारा शरीर क्या है, हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा यह शरीर प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ है। प्रकृति के पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ये समस्त संसार प्रकृति के पांच तत्वों से बना है, इसलिए इस दुनिया को भौतिक जगत कहते हैं। हमारा शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों से बना है, इसलिए जब डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं हम कहते हैं कि पांच तत्वों का बना शरीर पुनः पांच तत्व में मिल गया। सरल शब्दों में हम कहते हैं कि मिट्टी का बना मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। स्पष्ट है शरीर तत्वों से बना है। مٹی ہے، جڑ ہے۔ سنسار میں جتنی بھی چیزیں، وستویں، سادھن، ویبھو، پدارتھ جو بھی بنے ہیں، ایک چھوٹے اسکرو سے لے کر بڑے سے بڑی مشین، جو بھی یہ چیزیں ہیں، پرکرتی کے پانچ تتووں سے بنی ہیں۔ تو جیسے یہ چیزیں جڑ ہیں، نان لیونگ ہے، شریر بھی انہی پانچ تتووں سے بنا ہے، جڑ ہے، نان لیونگ ہے، پریورتنشیل ہے، اور آخرکار نشونت ہے۔ اب منشی آتما، ہیومن بینگ شبد کہنے سے تو دو استتو سدھ ہوتے ہیں، ہیومن باڈی پلس بینگ ملا کر ہیومن بینگ کہا جاتا ہے، مانو شریر پلس آتما ملا کر منشی آتما، جیواتما کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، منشی آتما کہنے سے دو استتو سدھ ہوتے ہیں، ایک پانچ تتووں کا بنا مانو شریر جو ستھول ہے، ان آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، جڑ ہے، پریورتنشیل ہے، اور آخرکار نشونت ہے۔ پرنتو شریر سے بھن چیتنیہ شکتی ہے، جس کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، انوبھو کر سکتے ہیں، کہ جب تک وہ چیتنیہ شکتی ہیں، ہم سوچتے ہیں، کرم کرتے ہیں، انوبھو ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ چیتنیہ شکتی نکل جاتی ہے، شریر ڈیڈ ہو جاتا ہے، ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے، شریر مر جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست سے سمبند بھی سماپت ہو جاتے ہیں، جیسے ہی چیتنیہ شکتی نکل جاتی ہے، ہم ترت کہتے ہیں جلدی کرو، جلدی تیاری کرو، جلدی نکالو، ہمارے سمبند سماپت ہو جاتے ہیں۔ اس چیتنیہ شکتی کو آدھیاتمک بھاشا میں آتما کہا جاتا ہے، جس کو ہم سول کہتے ہیں، اسپریٹ کہتے ہیں، سائیکولوجی میں اس کو ہم سائیکی کہتے ہیں، میڈیکل سائنس جس کو کانشینٹ انرجی کہتا ہے، وگیان جس کو لیونگ اینٹیٹی کہتے ہیں، اسپرچل انرجی کہتے ہیں، سرل شبد آتما کہتے ہیں۔ تو منشی सच्ची आत्मा कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए, एक पांच तत्वों का बना मानव शरीर और दूसरी इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति जिसको आत्मा कहा जाता है। प्रश्न आप सबसे ये है कि मैं कौन हूं? क्या मैं पांच तत्व का बना जड़ शरीर हूं या इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति हूं? सोचिए मैं खुद कौन हूं। देखने में तो शरीर आ रहा है, चैतन्य शक्ति दिखाई नहीं देती है। जैसे देखने में तो ये बल्ब आ रहा है कि बल्ब प्रकाश दे रहा है, ट्यूब लाइट दे रही है, हीटर गर्मी दे रहा है। देखने में बल्ब आता है, ट्यूब आती है, हीटर आते हैं, पर सत्यता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर ही बल्ब के द्वारा, ट्यूब के द्वारा, प्रकाश के रूप में, हीटर के द्वारा गर्मी के रूप में अनुभव होते हैं। इलेक्ट्रिक पावर नहीं दिखाई देता है, देखने में चीजें आती हैं। इस प्रकार भल देखने में शरीर आ रहा है, पर सत्य ये है कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं क्योंकि शरीर जड़ है, मैं जड़ नहीं हूं। मैं सोचती हूं, विचार करती हूं, ये चैतन्यता की निशानी। जड़ चीजें सोच नहीं सकती। मैं सोचती हूं, ये चैतन्यता की निशानी है। मुझे इच्छाएं होती है, कोई स्वादिष्ट मिठाई आप खाते हैं, चीज खाकर पूरी कर दी है, मुंह में मिठाई नहीं है, पर जीभ द्वारा लिया हुआ स्वाद फिर लेने की इच्छा किसको होती है? जीव को या चैतन्य को? किसको होती? कोई सुंदर स्थान हम देखकर आते हैं, हम उस स्थान से दूर घर आ गए हैं, पर उस स्थान की सुंदरता हमें बार बार याद आती है। वो किसको याद आती है? आंखों के सामने वो स्थान नहीं है, पर देखी हुई सुंदरता फिर याद आती है। वो किसको याद आती है? चैतन्य को याद आती है। तो देखिए, हम सोचते हैं, हमें इच्छाएं होती है, स्मृति रहती है, हम कर्म करते हैं। जड़ चीजें स्वयं कर्म नहीं करते, हम कर्म करते हैं, हमें अनुभव होता है, हमें दूसरों के लिए सहानुभूति होती है। अगर किसी के दुख, दर्द, कष्ट देखकर हमें जरा भी हमदर्दी ना हो, दया ना हो, हमें जरा भी सहानुभूति ना हो, तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर है, कठोर दिल है, इनमें जरा भी दया नहीं। तो विचार, इच्छाएं, स्मृति, कर्म, अनुभव, सहानुभूति, ये सब चैतन्यता के लक्षण हैं। तो इससे सिद्ध है कि मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर जड़ है, तत्वों से बना है, मैं आत्मा चैतन्य हूं, शक्ति हूं। तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य हमें यही समझना है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। सुनने में ये बात आपको साधारण लग रही होगी, आप सोचते होंगे कि ये हम जानते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं, किसी की डेथ होती है, हम श्रद्धांजलि देते हैं। अब बताइए कौन से शब्दों में श्रद्धांजलि देते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा की सदगति हो। तो आप देखिए, शरीर छोड़कर जाने वाली, क्योंकि गई कौन? गई कौन? आत्मा। शरीर तो यहीं पड़ा है, शरीर छोड़कर जाने वाली आत्मा के लिए हम कहते हैं उस आत्मा को शांति मिले। क्या जीते जी इस शरीर में रहते हुए हम खुद को आत्मा समझते हैं? समझते हैं? नहीं। कितने आश्चर्य की बात है, कितनी बड़ी अज्ञानता है दुनिया भर की चीजों को जानने वाले हम स्वयं को ही नहीं जानते। इसलिए भली ये सुनी हुई जानी हुई बात लग रही हो, पर ये मूल और मुख्य सत्य है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ, मस्तक द्वारा सोचती हूँ, आंख द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, पर सोचने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, सुनने वाली मैं स्वयं चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। राजयोग का प्रथम अभ्यास हमें यही करना है कि हम खुद को आत्मा समझे। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हम ये स्मृति रखें कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ, अति सूक्ष्म आकार बिंदु ही हो सकता है, न कि ट्राइंगल, स्क्वायर, षटकोण, अष्टकोण। स्मॉलेस्ट फिगर अति सूक्ष्म आकार बिंदु को कहा जाता है, आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जो शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाते हैं। मस्तक ब्रेन बॉडी की मेन कंट्रोलिंग ऑर्गन है। आत्मा क्योंकि बॉडी की कंट्रोलर है इसलिए मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। इसी की यादगार भक्ति में हम मस्तक में तिलक करते हैं। हर शुभ कार्य में भाइयों को, बहनों को, सबको तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। ये अविनाशी आत्मस्मृति का प्रतीक है। हम तिलक लगाते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, पर खुद को आत्मा नहीं समझते। यहाँ हम तिलक नहीं करते हैं, यहाँ खुद को हम आत्मा समझते हैं। हरेक को आत्मा दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हमें स्पष्ट रहे कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूँ गलत, मैं पुरुष हूँ रॉन्ग, मैं आत्मा हूँ। स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करते हैं हम, कहते हैं मेल बॉडी, फीमेल बॉडी। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। इस एक सत्य को भूल जाने के कारण हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। संसार कितने भेदभावों में बट गया है। इस एक सत्य को भूल जाने के कारण कितने डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये युवा है, ये बूढ़े हैं, یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے، دیہابھیمان سارے سنسار کو وبھاجت کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم بھائی چارہ اور سدبھاونا لانا چاہتے ہیں تو اس کا آدھار سول کانشیسنیس ہے، آتم ابھیمان ہے۔ اس لیے یہاں ہم پہلا پاٹ پکا کرتے ہیں کہ میں آتما ہوں، پرتیک ویکتی ایک آتما ہے اور ہم سبھی آتمائیں ایک پرماتما کے بچے آپس میں آتما آتما بھائی بھائی ہیں۔ ہم کمپیر کر سکتے ہیں کہ شریر ایک موٹر کے سمان ہے، میں آتما اس شریر روپی موٹر کو چلانے والی چیتنیا شکتی آتما ڈرائیور کے سمان ہے۔ ایک ڈرائیور دن رات گاڑی چلاتا ہے پر وہ اپنے آپ کو موٹر نہیں سمجھتا، اس سے کلیئرٹی ہے کہ موٹر الگ ہے، میں ڈرائیور الگ۔ بل ہر کشن ہم شریر دوارا کرم کرتے ہیں پر ہم شریر نہیں ہیں، ہم آتما ہیں۔ شریر ایک مکان کے سمان ہے، میں آتما اس کی مالک، میرا مکان ہے، میں مکان نہیں ہوں، میرا شریر ہے، میں اس شریر کی مالک آتما ہوں۔ شریر ایک وستر کے سمان ہے، میں آتما اس سے دھارن کرنے والی اس ورلڈ ڈراما کی ایکٹر ہوں۔ شریر ایک ڈریس ہے، میں آتما ایکٹر ہوں۔ گیتا میں بھی آتما کو رتھی کہا گیا ہے، شریر کو رتھ کہا گیا ہے۔ اس لیے آتما نکل جانے کے بعد جب ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں فلانے کی ارتھی اٹھی، ارتھی مینس جس میں رتھی آتما نہیں ہے اس ڈیڈ باڈی کو ارتھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے راجیوگ کا فاؤنڈیشن سول کانشیسنیس ہے، چونکہ ہم دیہبھان کے عادتی بن گئے ہیں اس لیے ہمیں ابھیاس کر کے اس پاٹھ کو پکا کرنا ہوگا کہ میں آتما ہوں۔ میں چاہوں گی کہ ہم پانچ منٹ پرتھم اس پاٹھ کو پکا کر لیں، ہم ابھیاس کریں گے سبھی پانچ منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اپنا ڈائری، پرس، فائل، بیگ اپنی سیٹ پر رکھ دیں اور ایک دوست سے الگ الگ کھڑے رہیں، ٹچ کر کے نہ کھڑے رہیں۔ جیسا میں آپ کو کہوں من سے فالو کرنا ہے، शरीर से जैसे कहूं, शरीर से सिर्फ घूमना है। पहला अभ्यास, मन ही मन ये चिंतन करना है, मैं आत्मा हूँ। चैतन्य शक्ति हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। राइट साइड घूम जाए, दूसरा चिंतन, मुझे स्पष्ट है कि शरीर तत्वों से बना है, शरीर जड़ है, मिट्टी है, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। और राइट साइड घूम जाए, तीसरा चिंतन, प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है, हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। सारा विश्व परिवार है, और राइट साइड घूम जाए। अब मुझे स्पष्ट है, शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है, हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। हमें सबको आत्मा दृष्टि से देखना है, हरेक के मस तक में देखना है। किसी को भी देह दृष्टि से नहीं देखना है। रूहानी नजर से देखना है। और राइट साइड घूम जाए। मेरे लिए यह शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। इस शरीर रूपी साधन द्वारा मुझ आत्मा को कर्म करना है। इस शरीर को स्वच्छ रखना है, इसे स्वस्थ रखना है। परंतु शरीर के अभिमान में नहीं आना है। हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हुए मुझे इसी स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट बैठ जाए। अब और दो मुख्य बात हमें समझनी है कि आत्मा माना क्या, शरीर माना पांच कर्मेंद्रियां, हाथ पांव जिसे स्पर्शेंद्रिय कहते हैं, आंख नाक कान मुख और हाथ मिलाकर शरीर कहा जाता है। शरीर की पांच कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा मन बुद्धि संस्कार का चैतन्य समूह है। मन और बुद्धि आत्मा की चैतन्यता है। आत्मा मन और बुद्धि द्वारा ही अभिव्यक्त होती है। अब हम ये समझेंगे कि मन किसको कहते हैं। मन शब्द से हम सभी परिचित हैं। अक्सर हम कहते हैं मन की शांति चाहिए। बरसों से भक्ति करते हैं पर आज तक भी कंप्लेन है कि मन भटकता रहता है। तो मन किसको कहते हैं? मन भटकता है, मीन्स क्या होता है? मन कोई चीज नहीं है जो निकलकर भटकती है। मन कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है। जब हम कहते हैं मन भटकता है, मीन्स क्या होता है? क्या होता है? जब आप कहते हैं कि मेरा मन भटक रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अनेक विचार आते हैं, बैठे हैं एक विषय पर सोचने के लिए, अन्य अनेकानेक विचार आ जाते हैं, तो हम कहते हैं मन भटकता है। तो आत्मा की संकल्प शक्ति को मन कहते हैं, आत्मा की विचार शक्ति, मनन शक्ति, थॉट पावर को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, विचार उत्पन्न करना। इसलिए विचार चलते ही रहते हैं। मेडिकल साइंस कहता है प्रति 2 सेकेंड एक विचार मन में उत्पन्न होता है। व्यक्ति 1 मिनट में 30 विचार कर लेता है। प्रतिदिन हम 30,000 विचार करते हैं और हर एक को अनुभव है कि जब हम टेंशन में होते हैं, चिंता भय में होते हैं, तो विचारों की स्पीड फास्ट हो जाती है। तो मन का कार्य ही सोचना है। इसलिए मन को विचार शून्य नहीं बना सकते हैं। मन का कार्य ही सोचना है। सोचना ही चैतन्यता की निशानी है। इसलिए हम मन को विचार शून्य नहीं कर सकते हैं। विचार ही न चले ये नहीं हो सकता है। हाँ, हम विचारों की दिशा को बदल सकते हैं, चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, हम उसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। बेशक हम आवश्यक सोचें, पर अनावश्यक व्यर्थ समाप्त करें। इसलिए राजयोग में हम मन को मारते नहीं हैं, सुधारते हैं। मन को मारना नहीं है, सुधारना है। हट क्रियाओं से, देह दमन से मन का दमन नहीं करना है। हमें मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर मन को सुमन श्रेष्ठ मन बनाना है। अब आप देखिए, अब तक खुद को शरीर समझते रहे, देहभान में रहे, इसलिए हमने मन का उपयोग किस में किया? हमने मन का उपयोग शरीर चिंतन, संसार चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में ही अधिक किया। इसलिए उसकी निशानी आप देखिए, इसलिए वो ही विचार बार बार आते रहते हैं। आप अपने आप को देखिए, अक्सर कौन से विचार आपको आते, अक्सर कौन सी बातें आप सोचते रहते, वही नौकरी धंधा घर गृहस्थी समाज संसार शरीर परिवार, वही बातें सोचते रहते, क्योंकि हमने अब तक वही सोचा है। अब हमें मन का उपयोग स्वचिंतन आत्मचिंतन में भी करना है। अब हमें मन परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में लगाना है। आप देखिए, आपस में मिलते हैं, घंटों तेरी मेरी इसकी उसकी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, उसमें समय की कोई सीमा नहीं रहती। कहेंगे दो घंटे बीत गए बातें करते, पता भी नहीं चला, ऐसे कैसे देर रात तक बातें करते रहते हैं। उस समय किसी को भी नींद नहीं आती। यहां हम 5-10 मिनट आत्मचिंतन का अभ्यास कराते हैं, लोग सो जाते हैं। अभी भी देखो, आसपास देखो, लोग परेशान हो जाते, घड़ी देखते रहते। स्पष्ट है हमें स्वयं में इंटरेस्ट नहीं है, हमें दूसरों में इंटरेस्ट है। कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, हमें उसमें इंटरेस्ट है, हमें अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है। हमें स्वचिंतन में, परमात्मा चिंतन में इंटरेस्ट नहीं। इसलिए कहते हैं परमात्मा की याद में मन नहीं लगता है। फिल्में देखते हैं तो वहां मन लगता है, वहां सारे एकाग्र हो जाते। परमात्मा याद के लिए कहते हैं मन भटकता है। तो अब स्वयं में परिवर्तन करना है। अब हमें इस अनमोल विचार शक्ति मन का उपयोग श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन, सकारात्मक चिंतन में करना है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। मन का कार्य है सोचना। एक मिनट मैं आपको साइलेंस में बिठाऊं, आपको कई विचार मन में आएंगे। क्लास पूरा होगा, हम चाय पीने जाएंगे, हम नाश्ता करेंगे, हम ये देखेंगे वो देखेंगे, कई विचार आ सकते हैं, पर आप निर्णय करते हैं कि अभी हम ज्ञान सुनते हैं, फिर हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। इसलिए कहते हैं मन घोड़े के समान चंचल है, पर बुद्धि उसकी लगाम है। आपके सामने 10 ऑप्शन है, बुद्धि सिलेक्ट करती है, चूज करती है। तो आत्मा की अंडरस्टैंडिंग पावर को, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। पर आज बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। इसलिए हम कहते भी हैं बुद्धि ही बिगड़ गई है, इनकी बुद्धि ही मारी गई है, ये समझ नहीं रहा है। अक्सर हम कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट संसार बन गया है। तो पहले बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। इसलिए अगर बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य बनाना चाहते हैं, हमें बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने की जरूरत है। परमात्मा ही वो परम चैतन्य शक्ति है जो सदा पावन है, ऑलमाइटी है। केवल परमात्मा की याद से बुद्धि शुद्ध और शक्तिशाली बन सकती है। इसलिए हम गाते हैं, कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सदमति दे भगवान। क्यों हम ये गाते हैं? जरूर परमात्मा से कभी हमें सत्य बुद्धि मिली है, शुद्ध बुद्धि मिली है, तब तो हम उनको कहते हैं। इसलिए बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने की जरूरत है, और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं। हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। कर्म के संचित प्रभाव को ही स्वभाव संस्कार कहते हैं। कर्म ही संस्कार बनते हैं। हर कर्म का प्रभाव आत्मा में रिकॉर्ड होता है। आप अच्छे कर्म करते हैं, नित्य के दैनिक साधारण कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा में पड़ता है। आप खुलेआम करते हैं या छिपके करते हैं, पर हर कर्म का प्रभाव आत्मा में संचित होता है। बार 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 वो ही कर्म करते रहने से वो प्रभाव दृढ़ हो जाता है, जिसे स्वभाव संस्कार कहते हैं, जिसको हम हैबिट्स आदतें कहते हैं, टेंडेंसी कहते हैं। सब कॉन्शियस कहते हैं, सरल शब्द संस्कार कहा जाता है। और हम हरेक जानते हैं, कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ भी साथ नहीं ले जाते हैं, पर जीवन भर किए हुए कर्मों का हिसाब संस्कार के रूप में आत्मा अपने साथ ले जाते हैं। जैसे संस्कार, ऐसी आत्मा की गति होती है, पुनः ऐसी ही जीवन स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए अगर संस्कारों को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, क्योंकि कर्म ही संस्कार बनते। हम एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार, चालीस बार गुस्सा करते रहते हैं, हमारा स्वभाव क्रोधी बनता जाता है। व्यक्ति दो बार, दस बार, बीस बार झूठ बोलते हैं, हमारी आदत झूठ बोलने की हो जाती। फिर हम अनावश्यक छोटे छोटे बातों में भी झूठ बोलते रहते हैं। आपने देखा है छोटी छोटी चीजों की चोरी करते करते व्यक्ति पक्का चोर बन जाता है। कर्म ही संस्कार बनते हैं। पर आश्चर्य की बात, जब कर्म करते हैं तो हम अटेंशन नहीं देते हैं। जब कर्म फल भोगते हैं तब हम सोचने बैठते हैं कि मुझे इतनी भोगना क्यों आ रही, मेरे नसीब में ऐसा क्यों लिखा है, मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हम भूल जाते हैं हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, पर जब हम करते हैं तो अटेंशन नहीं देते। आप हर एक अपने आप को चेक करें। हम घंटों व्यर्थ सोचते रहते, नेगेटिव सोचते रहते, मन ही मन कुड़ते रहते हैं। हम घंटों व्यर्थ तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। हम घंटों गलत कामों में लगे रहते हैं। जब कर्म करते हैं अटेंशन नहीं देते, कर्म फल भोगते हैं तब सोचने बैठते हैं, और स्वयं का ज्ञान नहीं है, स्वदर्शन करने का अभ्यास नहीं है, इसलिए दूसरों को दूषित करते हैं कि इसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये मुझे विघ्न डाल रहे हैं। हम दूसरों को दूषित करते हैं। हमें स्वदर्शन करना है, स्वयं को देखना है। जीवन की कई समस्याओं का कारण हम खुद हैं, हम खुद हैं, हमारे खुद के संस्कार है। पर हम साइलेंस में बैठ के स्वचिंतन करते रहे हैं, और उसी का रिजल्ट आप देखिए, आज हम सभी आत्माएं पतित दुखी अशांत बन गए हैं, हरेक के संस्कार बिगड़ गए हैं। दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स दे देते हैं, फलाना बहुत अभिमानी है, बहुत झूठा है, बहुत प्रपंची है, बहुत गुस्सेल है, दूसरों के लिए तो रिमार्क्स देते हैं। खुद को देखना है, अपने आप को महसूस करना है कि मेरे संस्कार मेरी आदतें कैसी हैं। आपस में झूठा अभिमान है, इसलिए आपस में स्वीकार नहीं करते हैं। कोई अगर हमारी एक भूल बताते हैं, हम महसूस नहीं करते, हम उनकी चार भूल बता देते कि पता है तुम कैसे। यह अभिमान है, झूठा अभिमान है। पर जब हम परमात्मा को याद करते हैं, पवित्र स्थान पर जाते हैं, जब हम महान आत्माओं से मिलते हैं, तो हमें महसूस होता है, तब हम रियलाइज करते हैं। इसलिए हम आरती में, भजनों में, प्रार्थना में गाते हैं, स्वीकार करते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, गाते हैं कि नहीं गाते हैं? मैं पापी नीच कपटी हूं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, तब हम महसूस करते हैं। बेशक आज हम सभी आत्माएं कम या ज्यादा मात्रा में पतित दुखी शांत बन गए हैं, कोई काम वासना के वश है, कोई क्रोध के वश है, कोई लोभ के वश है, कोई अभिमान के वश है, पर एक सत्य हमें अब समझना है कि हम आत्माएं ओरिजिनली पतित नहीं है। बेशक हम पतित बन गए हैं, बिगड़ गए हैं, दुखी अशांत हो गए हैं, पर ओरिजिनली आत्मा दुखी अशांत नहीं है। हर एक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। हर एक आत्मा अपने असली स्वरूप में सात गुणों का स्वरूप है। हर एक आत्मा सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है। इसलिए हमें स्वच्छता अच्छी लगती है, गंदगी नहीं। हमें पवित्रता अच्छी लगती है, विषय वासना नहीं। हमें सच्चरित्रवान अच्छे लगते हैं, बदचलन वाले नहीं। क्योंकि हरेक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। हमें जीवन में शांति चाहिए, न कि अशांति। क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है, शांति। पर जब हम आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, शरीर भान में आते हैं, तो गुस्सा करने लगते हैं। पर गुस्सा करके भी आखिर शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ओरिजिनलिटी शांति। कोई 24 आवर्स गुस्से में नहीं रह सकता। गुस्सा करके भी आखिर शांत हो जाते हैं। तब हम कहते हैं, अब आपका मिजाज शांत हुआ, अब हम आपसे बातचीत करें। हर एक आत्मा ओरिजिनली शांत है। इसलिए हम ये याद रखेंगे, मैं शांत आत्मा हूं। ओम शांति का अर्थ है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। ये आप अभ्यास करके देखिए। कोई कितना भी गुस्सा करे, अगर आपको ये स्मृति है कि मैं शांत आत्मा हूं, मेरी ओरिजिनल नेचर शांति है, आप अनुभव करेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए हम रोज साइलेंस में बैठकर ये सत्यता रिवाइज करते हैं, खुद खुद को पक्का कराते हैं कि मैं शांत आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। हमें जीवन में सुख चाहिए, न कि दुख, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है। इसलिए दुख में भी सुख हम ढूंढते हैं, हम दुख भूलना चाहते हैं, सुख के हर क्षण एंजॉय करना चाहते हैं। हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है, कोई हमारी घृणा करे, नफरत करे, वो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। इसलिए हर आत्मा को प्यार चाहिए। बल शरीर से कोई बूढ़े हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, हर आत्मा को प्यार चाहिए, वैल्यू चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। थोड़ा भी हम किसी का तिरस्कार करते हैं, नफरत करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें सब खुशी आनंद में रहे वो अच्छा लगता है। कोई उदास रहे, निराश रहे, डिप्रेस रहे, वो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। ये हमारी ओरिजिनल 7 क्वालिटीज है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। ये हमारे असली 7 गुणधर्म है। मैं आत्मा 7 गुणों का स्वरूप। इसलिए जैसे ही आप खुद को आत्मा समझेंगे, मन शांत होने लगेगा, आप खुद में एकाग्र होने लगेंगे, आप स्वयं में आनंद आने लगेगा। इसलिए हमें आत्मस्थ, सोल कॉन्शियस बनने की जरूरत है। हमें स्पष्ट रहे शांति जंगलों में नहीं है। मैं आत्मा शांत आत्मा। हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें भीतर जाने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। सुख साधनों में नहीं है। मैं आत्मा सुख स्वरूप। अगर मुझे सुख चैन नहीं है, कितना भी बड़ा महल हो, अपार धन वैभव हो, मुझे उसमें अच्छा नहीं लगता है। आनंद फिल्मों में, होटलों में नहीं है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप। अगर मुझे खुशी नहीं है, कितनी भी बड़ी पिकनिक पार्टी महफिल हो, मुझे मजा नहीं आता है। इसलिए हमें अपनी स्थिति, अपने आत्म स्वरूप को शुद्ध श्रेष्ठ बनाना है, फिर से उसमें स्थित होना है। और इस प्रकार हम आत्मा इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। अभी जिस दुनिया में हम बैठे हैं, जीवन जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म फल भोग रहे हैं, इन आंखों से जो संसार आप देख रहे हैं, ये साकार मनुष्य लोक है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये प्रकृति जगत है, 5 तत्वों की बनी दुनिया है। इसको स्थूल वतन, कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। यहां हम आत्मा आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं, इसलिए हमारे लिए यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, ये वर्क प्लेस है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। हम कहते हैं वर्ल्ड ड्रामा है, सृष्टि रंगमंच है, हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स हैं, शरीर हमारी ड्रेस है, वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। संसार मुसाफिर खाना कहते हैं, जीवन यात्रा कहते हैं, आत्मा को मुसाफिर कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं, एक दो को याद दिलाते हैं, वैसे हम भूल जाते हैं, पर जब कोई शरीर छोड़ते हैं तब याद आता है, अकेले आए हैं अकेले जाना है, तब याद आता है। पर कहां से आए हैं, कहां जाना है? अकेले आए हैं ये पता है, अकेले जाना है ये पता है, पर कहां से आए हैं, कहां जाना है? चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से बताया है, वो हम आत्माओं का असली घर परम धाम है, जिसे शांति धाम परलोक ब्रह्मलोक कहते हैं। इस दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार, प्रकृति का ये छठवां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व है, जहां हम आत्माएं अपने ओरिजिनल आत्म स्वरूप में स्थित है, वो हम आत्माओं का असली घर है। वहां शरीर नहीं है, इसलिए हलचल नहीं है, आवाज नहीं है, वो शांति की दुनिया है, साइलेंस वर्ल्ड है, ये टॉकी वर्ल्ड है, यहां हम आवाज में आते हैं। अगर इस दुनिया में रहते हुए हमें ये याद रहे कि हमारा असली घर परम धाम है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये सिर्फ कर्म क्षेत्र है, तो हम इस दुनिया में रहते भी डिटैच रह सकते हैं, हम इस संसार में रहते भी अनासक्त कमल फूल बन सकते हैं, और इस शरीर में रहते हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते, अगर ये सत्य हमें याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूं, तो हम इस देह में रहते भी सोल कॉन्शियस बन सकते हैं, आत्मभिमानी रह सकते हैं। ये है हम आत्माओं का असली असली वास्तविक परिचय। इस आत्मा परिचय में स्थित होने के बाद ही हम परमात्मा से योग लगा सकते हैं, मनोमिलन कर सकते हैं। इसलिए प्रथम लेसन आत्मा का है, आपका सेकंड लेसन परमात्मा का परिचय है। हम कह सकते हैं आत्मा चिंतन राजयोग की आधारशिला है। तो हम फिर से 5 मिनट स्वचिंतन का अभ्यास करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, अपना डायरी पर्स फाइल बैग साइड में रख दीजिए। जितना हो सके एक दो से अलग अलग होकर बैठिए, टच करके न बैठे। काफी कुर्सियां हैं, आराम से बैठिए, कमर सीधी रखें, आंखें नेचुरल खुली रहने दें। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, इसलिए आप मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। हम आत्मा स्थिति में स्थित होंगे और स्वचिंतन का अभ्यास करेंगे। मैं सजेशंस देती जाऊंगी, आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, मन ही मन रिवाइज करना है। जो विचार मैं आपको दूं, मन ही मन उसके अर्थ को समझकर अनुभव करना है। आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा हूं। चैतन्य शक्ति अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। मस्तक में स्थित होकर शरीर को चला रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। ये मेरा घर नहीं है। मेरा असली घर शांति धाम है। जो इस देह की दुनिया से दूर है। पांच तत्वों से पार है। जहाँ अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, मैं आत्मा ब्रह्मलोक के निवासी अपने असली स्वरूप में, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मुझे अपने स्वरूप में ही आनंद है। मैं शांत और शीतल हूँ। अजर अमर अविनाशी मैं आत्मा शाश्वत सनातन मुझ आत्मा में ही सभी गुण समाये हुए हैं। मुझे बाहर खोजना नहीं है। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मन शांत होने लगता है। मुझे स्वयं में आनंद आने लगता है। मैं आत्मा हूँ। प्रभु संतान हूँ। मैं शांत हूँ। मैं स्वयं दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति ओम शांति। ओम शांति।